नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही।
हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों को सशक्त बनाया है। उन्होंने लोगों से आत्मनिर्भर भारत आंदोलन को मजबूत करने को कहा।
2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है, और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज चौथे दिन भी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच लोकसभा ने आज मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण लाया गया था। संसद ने आज राज्यसभा की मंजूरी के साथ तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक देश के तटीय जल क्षेत्र में व्यापार करने वाले जहाजों को विनियमित करता है। यह विधेयक का उद्देश्य तटीय नौवहन के विनियमन, तटीय व्यापार को बढ़ावा देना और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहन देने से संबंधित कानून को संशोधित करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना है। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर कथित हमले की निंदा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने इस हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि ये हमला ममता बनर्जी सरकार के नेतृत्व में पूरी तरह से चरमराती कानून व्यवस्था का परिचायक है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना आज जारी कर दी है। नामांकन 31 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होगा। देश आज भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के लिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये दिन भारत की समृद्ध बुनाई परंपराओं का उत्सव मनाने का है, जो नागरिकों की रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत लेह लद्दाख में चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 3000 हस्तनिर्मित राखियां भेजी हैं। यह एकता और राष्ट्रीय गौरव की प्रबल भावना को दर्शाता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य आज तीसरे दिन भी जारी है। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और नागरिक प्रशासन के कुल 518 कर्मी बचाव कार्य में जुटे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज से 13 अगस्त तक सिक्किम के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस क्षेत्र के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। ये चेतावनी गंगटोक, पांगयोंग, नामची, ग्यालशिंग और मांगन जिलों के लिए लागू की गई है। इससे भूस्खलन, यातायात बाधित होने की भी संभावना है। खेलों में डूरन कप में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में मणिपुर के इम्फाल में निरोका एफसी का सामना इंडियन नेवी एफटी से हो रहा है। शाम को एक अन्य मैच में ग्रुप बी की बीएसएफ एफटी और मोमडन एससी कोलकाता में आमने सामने होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।